الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو تقوی تک پہنچ جاؤ. یہ ایک آیت ہے قرآن کریم میں روزوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے اور اس کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا. پلرز آف اسلام میں سے ایک پلر کیا ہے؟ روزہ رکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ہم پر کرم کیا ہے, بڑی بلیسنگ ہے یہ کہ الحمدللہ ہم شعبان کے مہینے میں اب داخل ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں شعبان کا مہینہ بھی بڑی فضیلت والا ہے. اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا جس میں ہم ہیں, اس میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے, تقریباً پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں, لوگ اس کے بارے میں غافل رہتے ہیں, لوگ اس کو بہت توجہ نہیں دیتے. لیکن یہ مہینہ ایسا ہے جس میں کہ انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں. پورے سال کے آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے میں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھوں تاکہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یعنی اس مہینے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے روزے رکھیں. جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں, اگر زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ منڈے تھرسڈے کا رکھ لیں, 13, 14, 15 کا رکھ لیں, لیکن کچھ نہ کچھ روزے کو چکھنا شروع کریں اس مہینے میں تاکہ جب رمضان المبارک آئے تو ہم تھوڑے سے روزے کے یوز ٹو ہو گئے ہوں, تھوڑا سا ہمیں روزے کا پتہ چل گیا. ورنہ جب ہم ایک دم رمضان میں روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ دن تو پہلا ایک ہفتہ تو ہمارا ایسا گزرتا ہے کہ ہمیں ہیڈ ایکس ہو رہی ہیں اور ہم نڈھال پڑے میں ہیں اور ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا, نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے نہ کچھ, بس سارا دن پڑے ہوئے سوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پورے سال سے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا. تو شعبان میں رمضان کی اس طرح سے تیاری کریں کہ اس میں تھوڑا تھوڑا روزہ رکھنا شروع کیجیے اور یہ سوچ کے اپنے اعمال کو اور اچھا کریں کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے. اس کے بعد اب آنے والا مہینہ رمضان کا, جس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم ابھی جمع ہوئے ہیں کہ رمضان کیسا پیارا مہینہ ہے, کتنا فضیلت والا مہینہ ہے, کتنا برکتوں والا, فل آف بلیسنگز ہے, فل آف بلیسنگز, بہت خیر ہے اس مہینے میں. اتنی زیادہ خیر ہے جو آج میں آپ کو تھوڑی باتیں آج بتاؤں گی بھی, اتنی خیر ہے اس مہینے میں کہ اگر آپ کو ٹرولی پتہ چل جائے کہ اس میں کتنی خیر ہے تو آپ وش کریں کہ اللہ سارا سال رمضان ہی رہے. اتنا پیارا یہ مہینہ, اتنی برکتوں والا یہ مہینہ. اس مہینے کا ہمیں انتظار ہونا چاہیے. صحابہ کرام اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. تو ہم بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک صحت عافیت کے ساتھ پہنچا دینا تاکہ ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں. کیونکہ اس میں انسان کے جو اعمال ہیں وہ کتنی گنا ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں, جو نیکیاں اس کی کتنی گنا ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں. कितना ज़्यादा वो अजर पा सकता है, अल्लाह ताला की रहमतें कितनी बरस रही होती हैं। मैं आपके सामने एक हदीस रखती हूँ, आपको उससे पता चलेगा कि रमज़ान कितना मुबारक महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान जैसा बाबरकत महीना आ रहा है, तो अल्लाह ताला इस महीने में तुम्हें अपनी रहमत में ढांप लेता है। यानी जो ही ये महीना स्टार्ट होता है, अल्लाह ताला की रहमतें इतनी होती हैं कि कवर कर लेती हैं आपको, इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत होती है। और फरमाया कि अल्लाह ताला इस महीने में गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह, कि इंसान की बख्शिश का महीना आ गया। समझ लें, ये वो महीना है जिसमें मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। सारी ज़िंदगी के गुनाहों को के ऊपर अल्लाह ताला चाहे तो लकीर लगा दे कि सब डिलीट हो गए, सब ख़त्म हो गए और आप पाक साफ हो सकते हैं इस महीने में। तीसरी बात क्या बताई, फरमाया ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। यानी इसमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए हमारे असलाफ जो हमारे बड़े थे, यानी सहाबा ताबईन और ये बड़े बड़े जो नेक लोग थे, वो क्या करते थे कि वो अपनी दुआओं को संभाल के रखते थे रमज़ान के लिए, कि ये दुआ मैं रमज़ान में मांगूंगा, इसलिए कि उनको पता था कि ये दुआओं की कबूलियत का महीना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथी बात क्या है कि अल्लाह ताला इसमें तुम्हारा ज़ौक और शौक़ देखता है कि तुम्हें कितना शौक़ है रमज़ान का, कितना शौक़ है। आपको शौक़ है ना? बाज़ लोगों का ये हाल होता है कि उनके सामने रमज़ान का नाम लिया जाए तो उनको उसी वक़्त टेंशन शुरू हो जाती है, हाय रोज़े आ जाएंगे, हाय अब क्या होगा, हाय गर्मी बहुत, हाय लंबे रोज़े बहुत, हाय हम कैसे रोज़ा रखेंगे, वो उसी वक़्त उनको परेशानी शुरू हो जाती। परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला तो आपका ज़ौक और शौक़ देखता है कि कितना इनको शौक़ है इस महीने का। अपना शौक़ इसका मतलब अल्लाह ताला को दिखाएं, ये नहीं कि रमज़ान आने वाला है और मुझे परवाह ही नहीं हो। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हम क्लोज़र हो रहे हैं ना रमज़ान से। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें फ़िक्र ही नहीं है कि रमज़ान आ रहा है, हमें परवाह ही नहीं कि रमज़ान आ रहा है। नहीं, हमें शौक़ होना चाहिए, ये होना चाहिए कि अल्लाह कब रमज़ान आ जाए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसका इंतज़ार होना चाहिए कि अब इतने दिन रह गए हैं रमज़ान आने में। तो एहसास करना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपको प्यारी होती है आपको उसका इंतज़ार होता है ना, इस तरह इंतज़ार होना चाहिए। और फिर तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर फ़ख्र करता है, यानी फ़रिश्तों के आगे अल्लाह ताला जैसे जिसको कहेंगे प्राउड होता है कि देखो मेरे बंदों को, ये सारा दिन भूखे प्यासे रह रहे हैं सिर्फ किस लिए, मेरी खातिर, और ये रात को क़याम कर रहे हैं सिर्फ मेरी खातिर। अल्लाह ताला इतना बंदों से खुश होता है, इतना बंदों के वजह से उनके नेक आमाल की वजह से इतना फ़ख्र करता है फरिश्तों पे कि अल्लाह ताला उनको बताता है कि देखो ये मेरे बंदे कितनी नेकियों में भाग दौड़ कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात जो फरमाई, फरमाया बड़ा बदबख्त है वो इंसान जिसको रमज़ान का महीना मिला और वो उसकी रहमत से महरूम रहा, वो उसकी रहमत नहीं ले सका, वो बड़ा ही बदकिस्मत है, बड़ा ही महरूम है, बहुत ही खसारे में है। हम बदकिस्मत उसको समझते हैं जिसके पास पैसा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकिस्मत किसको फरमाया, जो इस महीने की रहमत को नहीं पा सका। इस महीने में जिसमें इतनी अल्लाह ताला की रहमतें हैं, अगर इस महीने में भी रहमत नहीं मिली तो और कब मिलेगी। इसलिए इस महीने के अंदर रहमत को लेने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करनी है, एक्स्ट्रा अपने आप को थकाना है, मेहनत करनी है कि अल्लाह ताला तेरी रहमतें मुझे भी मिल जाए। अल्लाह ताला इस महीने को शहरुन अज़ीम, इसको महीने को बताया गया, ये बड़ा अजीम शान महीना है। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है जिसको अल्लाह ताला ने चूज़ किया अपना कलाम नाजिल करने के लिए। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाजिल हुई अक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो किस महीने में नाजिल हुई? इसी रमज़ान के महीने, यानी इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली थी, इसी महीने से इस उम्मत की शुरुआत हुई, इसी महीने की वजह से हम मुसलमान हैं आज, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, ये कुरान जैसी नेमत हमें मिली इस महीने में। तो ये महीना बहुत ख़ास महीना है जो हम तक आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को बड़ा अज़ीम शान करार दिया और फरमाया कि ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 5 फजीलतें अता फरमाई। 5 फजीलतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के 5 वर्चूज बताए हैं, 5 ख़ास बातें जो इस महीने में या सिर्फ और पूरे साल में कभी नहीं। ठीक है, तो वो 5 फजीलतें कौन सी हैं? देखिए, रोज़ा रखना तो मैंने आपको जैसे अभी आयत आपके सामने पढ़ी है ना कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे ऊपर रोज़े ऐसे फ़र्ज हुए, पिछली उम्मतों पे भी फ़र्ज थे, तो रोज़ा तो पिछली उम्मतों को भी मिला था, वो भी रोज़े रखते थे, उनके रोज़े रखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन रोज़े उनमें भी थे। लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी और को नहीं मिली, इस उम्मत मुस्लिमा को स्पेशली अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली बात, रोज़ेदार के मुंह की बसांत जो है, मुंह से जो उसकी स्मेल आती है भूखे रहने की वजह से, ये नहीं कि कोई बैड स्मेल माउथ की, वो नहीं, भूखे रहने की वजह से इंसान के मुंह से खास स्मेल आने लगती, वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद, या समझ ले कि परफ्यूम से भी ज़्यादा पसंद अल्लाह ताला को उसके मुंह की स्मेल है। क्यों? इसलिए कि वो रोज़े में है, वो अल्लाह ताला के लिए भूखा और प्यासा है, तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। फिर दूसरी बात कि रोज़ेदार के लिए इस महीने में फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम अपने लिए तो इस्तिग़फ़ार करते ही करते हैं कि अल्लाह हमें बख्श दे, लेकिन मसलन हमने रोज़ा रखा हुआ है, कभी थके हुए हैं, कभी ज़्यादा नहीं दुआएं कर पा रहे, कभी दुआएं भी भूल जाती हैं, कभी हिम्मत नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी कि मेरे बंदों के लिए इस्तिग़फ़ार करें। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, फरिश्ते अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, और देखिए फरिश्ते कितनी पाक मखलूक हैं अल्लाह ताला के, हम तो गुनाहगार लोग हैं, फरिश्ते तो गुनाहों से पाक मखलूक, अल्लाह ताला के करीब वो मखलूक है, और वो अल्लाह ताला ने दुआओं के लिए लगा दी हमारे लिए, कितनी खुशकिस्मती है ये। तो फरिश्ते दुआएं मांगते हैं रोज़ेदारों के लिए। और तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला रमज़ान में हर रोज़ जन्नत को सजाता है रोज़ेदारों के लिए। जन्नत पहले से ही कितनी ब्यूटीफुल है, नेमतों से भरी हुई है, कितनी हसीन है, लेकिन अल्लाह ताला उसको और मज़ीद डेकोरेट करता है, हर दिन डेकोरेट किया जा रहा है रमज़ान के हर दिन। जैसे कि आपके घर कोई मेहमान आने हो, मसलन शादी वगैरह है, तो आप सब अपने घरों को कितना डेकोरेट करते हैं, लाइट्स भी लगाते हैं और अंदर भी कुछ कितनी खुशबू का इंतज़ाम करते हैं, कितना कुछ करते हैं अपने घरों पर, बाज़ लोग पेंट नया करते हैं, बाज़ लोग कि हमारे घर में फलां लोग आ रहे हैं। जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला जन्नत को सजाता है इस महीने में कि मेरे बंदे इसमें आने वाले हैं, जैसे जैसे उनकी नेकियां बढ़ती जाती हैं जन्नत और सजाई जाती है। तो जन्नत के हुसन का क्या कहना कि जो पहले ही खूबसूरत, ऑन टॉप ऑफ इट अल्लाह ताला उसको मज़ीद खूबसूरती अता फरमा रहा है और सजा रहा है, क्योंकि आपको पता है ये वो महीना है ना जिसके अंदर जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, सब दरवाज़े, कोई एक भी बंद नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला चाहता है कि लोग जन्नत की तरफ आए। नेकियां करनी अल्लाह ताला आसान कर देता है इस महीने में, ये नेकियों का मौसम बहार है जिसको कहते हैं, इसमें नेकियां ग्रो करना बहुत इजी होता है। जैसे बाहर में आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो वह जल्दी फलता फूलता है ना, लोग कहते हैं स्प्रिंग का वेट करो उसमें लगाना, क्यों उसके वहाँ उस मौसम में जब आपने कोई पौधा लगाया वो फले फूलेगा। इसी तरह ये नेकियों का मौसम है, बहार है, इसकी नेकी बहुत बढ़ती है, बहुत आगे तक जाती है। तो एक ये बात कि इसमें जन्नत को सजाया जाता है। नंबर 4, सरकश जो शयातीन है आपको पता है उनको जंजीरों से बंद कर दिया जाता है, क्यों चेन कर दिया जाता है, इसलिए कि ये मोमिनों को सताएं नहीं, उनको बहकाएं नहीं, उनको गुमराह ना करें। अब ओनली वन है जो हमारा दुश्मन, हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा नफ्स, ये हमें बहकाता है। बाहर का दुश्मन अल्लाह ताला ने उसको इंतज़ाम कर दिया, उसको चेन कर दिया गया, अब वो हमें नहीं सता सकता, अब वो हमारे अंदर वसवसे नहीं डाल सकता, कोई ख्याल नहीं डाल सकता। तो एक दुश्मन जो अंदर बैठा हुआ है ना, इसका सिर्फ इंतज़ाम करना होगा कि हम इसकी बात में ना आए। लोग कहते हैं ना कि अगर शयातीन कैद है तो फिर भी लोग बुराई के काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि नफ्स जो है ना इंसान का, वो तो बुराई का उसको कहता ही है कि बुरे काम करो, नफ्स इंसान को बहकाता है। और ये नफ्स शैतान ने इतना ट्रेन कर दिया होता है, 11 मंथ्स में इसके ऊपर वो वर्क कर रहा होता है। ऐसे ही जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि पंखे का आप चला दें तो जब वो स्पीड में चल रहा है, आप स्विच ऑफ भी कर दें तो फौरन तो बंद नहीं होता ना, चलता रहता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर जाके बंद होता है। इसी तरह 11 महीने से जब वो उसने इस नफ्स को बहकाया था ना, तो अब आपने शैतान को बंद भी कर दिया तो ये आहिस्ता आहिस्ता अभी आएगा सीधे रास्ते पे, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। तो आपको इसको काबू करना होता है। इस महीने में ईजी है नेकी करना, इसीलिए आप देखते नहीं हैं मस्जिदें कैसे भर जाती हैं, वो 11 महीने क्यों नहीं भरती, लोग कैसे सभी कुरान खोल के बैठ जाते हैं, 11 महीने में आप जितनी भी कोशिश कर लें उस तरह से नहीं पढ़ा जाता। क्या बात है कि आप पूरा महीना रोज़ा रख लेते हैं, बाकी दिनों में सिर्फ मंडे थर्सडे का भी रखने को कहें तो लोग कहते हैं मुश्किल है, बल्कि वो छोड़ें शव्वाल के 6 रोज़े मुश्किल हो जाते हैं, कहते वो ही नहीं रखे जाते। तो क्या बात है कि इस महीने में कोई ख़ास तो बात होगी ना कि नेकी करनी कितनी ईजी हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए और जहन्नुम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, एक दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। तो 5वीं बात, ये फजीलत अल्लाह ताला ने हमें दी है, इस उम्मत को दी है कि रोज़ेदार को अल्लाह ताला रमज़ान की आखिरी रात में बख्श देता है। आप देखें सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या इसका मतलब है लैलतुल कदर में अल्लाह ताला बख्श देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मज़दूर की मजदूरी उसको कब दी जाती है, जब वो मेहनत करके काम ख़त्म कर देता है तब उसको दी जाती है ना। तो जो आखिरी रात है रमज़ान की उसमें मोमिनों की बख्शिश हो जाती है, माफ़ कर दिया जाता है। तो ये तो 5 फजीलतें थीं जो इस उम्मत के लिए ख़ास हैं। इसके अलावा भी आपको मैं कुछ बातें बताऊंगी जो कि इस महीने की ख़ास और ख़ास है, स्पेशल इनामात हैं आपके लिए इस महीने के। इस महीने का इतना बड़ा इनाम है ये कि ये महीना वो है जिसमें के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, यानी पिछले रमज़ान से इस रमज़ान के दरमियान जितने गुनाह हुए वो कफ़ारा बन गया उनका, ये रमज़ान आना। यानी अब बीच का पूरा साल आपने जो स्पेंड किया है उसके अंदर जो गुनाह हुए वो माफ़ हो गए अगला रमज़ान आने पे। इसी तरह जन्नत में, जन्नत के जो दरवाजे हैं ना, गेट्स हैं, 8 गेट्स हैं, उनमें एक स्पेशली अल्लाह ताला ने किसके लिए लिखा, रोज़ेदारों के लिए, उसका नाम क्या है, बाबुर रयान। उसमें सिर्फ रोज़ेदार एंटर हो सकते हैं उसके ज़रिए जो रोज़े बहुत रखते थे, और कोई उससे एंटर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने एक गेट ही रख दिया रोज़ेदारों के लिए कि रोज़ा रख के आने वाले जो रोज़े रखते थे दुनिया के अंदर, वो इस गेट से एंटर हों। फिर देखें, ये महीना वो है जिसमें रोज़ा रखने की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सौमुली व अन अजजीबी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा, बाकी तमाम आमाल नेकियां जो हैं उनकी जजा बता दी गई, 10 गुना है इसकी, 70 गुना है इसकी, इतनी है इतनी। रोज़ा सिर्फ ऐसी नेकी है एक जिसका अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये मेरे लिए है, मैं इसका रिवॉर्ड दूंगा जब रोज़ेदार मेरे पास आएगा। ने दुनिया में नहीं बताया, सरप्राइज रखा है। और जितना बड़ा बादशाह, आपको उतनी ही बड़ी उससे जजा की भी उम्मीद होती है ना। कोई बादशाह आपको कह दे मेरे महल में आए, मैं आपको इनाम से नवाजूंगा, तो आप क्या समझते हैं छोटी सी चीज़ देगा? अब आपके जहन में क्या है, वो को बहुत ही बड़ी चीज़ों की, जाहिर है बादशाह बुला रहा है तो वो छोटा मोटा तो कोई चीज़ नहीं देगा, वो आपको $10 नहीं देगा, $100 नहीं देगा, तो बहुत बड़ा ही कोई इनाम देगा। अल्लाह ताला जब नवाजेगा तो इमेजिन करें कि कितना बड़ा इनाम होगा उसकी शान के मुताबिक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे लिए है रोज़ा, क्योंकि रोज़ेदार का किसी को नहीं पता चलता। आप में से कोई रोज़ेदार है, कैसे पता चलेगा जब तक मुंह से बताए नहीं मैंने रोज़ा रखा? देखिए, नमाज कोई देख सकता है, हज पे जाते हैं वो भी पता चल जाता है, ठीक है, ज़कात भी जिसको दी उसको तो पता चल गया आपने निकाली तो, लेकिन रोज़ा किसी को भी नहीं पता चलता। ये सीक्रेट है बंदे और अल्लाह के दरमियान, इट्स अ सीक्रेट। अब किसी ने अगर रोज़ा नहीं रखा हुआ, लोग चाहे जितना भी समझते रहे ये रोज़े से है, वो जाके खाता पीता रहे, किसी को नहीं पता। तो ये रोज़ा है ऐसी चीज़ है इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए रखता है, क्योंकि वो तन्हाई में भी है, अकेला भी है, तब भी कुछ नहीं खाता पीता। तो ये रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स एक दिन का रोज़ा अल्लाह के रास्ते में रखता है, सिर्फ एक दिन का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 ईयर्स के डिस्टेंस पे दूर कर देता है, 70 ईयर्स एक रोज़े के बदले। तो सोचें जब इंसान रोज़े रखता रहता है तो उसका चेहरा कितनी दूर अल्लाह ताला जहन्नुम से कर देगा। पूरी दुनिया का भी आपने चक्कर लगाना हो तो वो भी 70 ईयर्स तो नहीं लगेंगे, है ना। इसका मतलब इससे भी ज़्यादा दूर अल्लाह ताला रोज़ेदार के चेहरे को कर देता है जहन्नुम से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा जो है वो जहन्नुम से ढाल है, जुन्ना है, ढाल। यानी जैसे एक कोई वॉरियर जाता है ना जंग में जाता है, और वो उसके सामने शील्ड होती थी, शील्ड आगे कर देते थे कि अगर कोई तलवार या तीर आ रहा है तो वो अपने आगे ऐसे शील्ड रखते हैं ताकि वो हमें कोई आके चीज़ अटैक नहीं कर सकती ना, राइट, ऐसे शील्ड रखते थे। आपने कभी देखा वो गोल सी होती है ऐसे, तो रोज़ा ढाल है किससे? जहन्नुम की आग से। यानी जहन्नुम की आग और इंसान के दरमियान ये शील्ड बन जाएगा क़यामत के दिन, कि आग रोज़ेदार को ना छुए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फजीलत है। फिर क्या कोई कभी रोज़ा छोड़ना चाहेगा? कभी भी नहीं। तो इसी तरह रोज़ा वो चीज़ है जो क़यामत के दिन इंसान की सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला के आगे खड़ा होकर कहेगा। देखे ना, अब रोज़े को अल्लाह ताला कोई शक्ल दे देगा आमाल की ना, नेकियों की, उस दिन कोई अल्लाह ताला उनको कोई लाइक एक फॉर्मेशन दे देगा, तो रोज़ा बोलेगा और रोज़ा क्या कहेगा, या अल्लाह मैंने इस बंदे को भूखा प्यासा रखा सारा दिन, अल्लाह ताला मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर ले। अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल करेंगे, ये हमारा सिफारशी बन जाएगा उस दिन, जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बहन भाई, ना माँ बच्चे की, कोई रिश्ता नहीं कायम रहेगा। उस दिन जब कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा, उस दिन हमारा एक सिफारशी हो जाए जो हमारे लिए खड़ा हो और अल्लाह के आगे बोले, ये किसी और की मिजाल नहीं हो सकती। रोज़ा वो चीज़ है जो सिफारिश करके उस दिन बख्शिश करवाएगा। और एक दूसरी चीज़ क्या है? कुरान है। जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान भी सिफारिश करेगा अल्लाह ताला के पास और कहेगा कि अल्लाह ताला मुझे पढ़ पढ़ के ना इसका गला सूख जाता था, इतना मुझे पढ़ता था, अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल कर ले। तो ये दो चीज़ें सिफारशी बनेंगी क़यामत के दिन। लिहाजा ये हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि उसने रोज़ा जैसी इबादत दे के हमारे लिए बख्शिश का सामान कर दिया, हमारे लिए निजात, आखरत में निजात का सामान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रखा रमज़ान का, रमज़ान का ख़ास तौर पे जिसने रोज़ा रखा ईमान के साथ और एहतसाब के साथ, ये हदीस में है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ईमान और एहतसाब क्या है। ईमान और एहतसाब के साथ जिसने रोज़ा रखा रमज़ान का, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करा देते कर देते हैं। किस वजह से? दो शराइत हैं, लेकिन ईमान के साथ, अल्लाह पर ईमान होना चाहिए, और एहतसाब यानी सवाब की नीयत से हो रोज़ा और किसी नीयत से नहीं। इसलिए नहीं कि मैं स्लिम स्मार्ट हो जाऊंगी, चलो रोज़ा रखूँ ज़रा डाइटिंग ही हो जाएगी, इसलिए नहीं, डाइटिंग की वजह से नहीं और किसी और वजह से नहीं कि चलो सारे ही रोज़ा रख रहे हैं अब रोज़ा रख लेते, और इस वजह से भी नहीं कि मज़े मज़े की इफ्तारियाँ खाएंगे, इसलिए भी नहीं, किस लिए? कि सवाब मिले, मुझे अल्लाह ताला रिवॉर्ड करे। इस नीयत से जब आपने रोज़ा रखा तो पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। तो ये कितनी बड़ी इंसान की सआदत है, खुशकिस्मती है कि उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाए। और फिर आप देखें, जो इंसान रोज़ा ना रखे उसके लिए भी बहुत बड़ी वईद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दिया बग़ैर किसी शरई यूज़र के, यानी उसके पास कोई लिजिट रीज़न नहीं था जिसकी वजह से शरीयत उसको कहती है कि ठीक है आपको इजाज़त है, शरीयत इजाज़त नहीं देती, लेकिन उसने रोज़ा छोड़ दिया बग़ैर किसी शरई उज़र के या बग़ैर किसी बीमारी के, उसने ऐसे ही रोज़ा रख छोड़ दिया, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, तब भी उस एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। और हम कितना ईजी लेते हैं, बच्चे का एग्ज़ाम है कोई बात नहीं बेटा रोज़ा छोड़ दो, हम कितना इजी लेते हैं, आज मेरा जॉब का इंटरव्यू है तो इसलिए रोज़ा छोड़ दो, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे रोज़ा छोड़ देते हैं। प्रेग्नेंट औरत को और जो दूध पिलाने वाली है उसको रुख्सत है कि वो छोड़ सकती है, लेकिन उसमें भी देखें ज़रूर ये कि अगर मैं रख सकती हूँ तो क्यों ना रख लूँ, रख सकते हैं तो रखें, हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक जैसा नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मैं रख सकती हूँ तो ये नहीं कि मुझे तो डॉक्टर ने कह दिया, तो डॉक्टर को मेरी बॉडी का तो नहीं उस तरह से पता, मुझे खुद पता है, ये नियत करके रख लें अगर मैं अल्लाह ताला निभा सकी तो मैं निभा लूँगी, नहीं तो मैं रोज़ा खोल दूँगी, ये सोच के रख लें, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन रोक। लेकिन देखा गया जो प्रेग्नेंट है या दूध पिलाते तो पहले ही छोड़ के बैठ जाते हैं, अब हमने तो रखना ही नहीं, और उसके बाद ये 30 रोज़े इतने मुश्किल हो जाते हैं कि मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ हम क्या करें, हमारे तो ज़िंदगी के इतने बच्चे हुए, उस वक्त के रोज़े छूट गए, उस वक्त का ये हो गया, उसके बाद सारी ज़िंदगी रखने का मौका ही नहीं मिला, इतने मुश्किल लगे, कहाँ हमसे तो 6 रोज़े नहीं शवाल के रखे जाते, 30 रोज़े कौन रखेगा। ये तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी हमारे पर एहसान किया होता है कि इस इन दिनों में आसान होते हैं रोज़े, सब रख करके अल्लाह ताला ने एक माहौल ऐसा बना दिया, सब रख रहे थे हमारे लिए भी ईजी हो गया रखना, लेकिन उसके बाद यही रोज़े एक बोझ बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं वो रोज़े ही नहीं पूरे हुए हुए, तो ये बड़ा मुश्किल है, ये सोचना चाहिए कि बाद में भी ये रोज़े पूरे करने पड़ेंगे, तो ऐसे ही ना छोड़ दें। लिहाजा हाँ, ज़्यादा मैंने ये डॉक्टर से बात की और मुझे पता चला कि ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाइड्रेट रहें, तो अपनी हाइड्रेशन का इंतज़ाम रखें, या आप हाइड्रेटेड रहें तो इंशाल्लाह ताला आपके प्रेगनेंसी में भी आप रख सकते हैं। मैं खुद इसकी मिसाल हूँ, मैंने खुद रखी है, सारे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कुछ भी होता। और दूसरी बात ये, जब आप दूध पिला रहे होते हैं तब भी अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और आपने उसको सॉलिड्स शुरू कर दिए हैं तो उसके ज़रिए भी आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि थोड़ी सॉलिड्स उसको भी दे दें, उसका भी पेट भरा रहे। तो इस तरह से करके कोशिश ये करें कि ऐसे छोटे छोटे बहाने बना के और रोज़े को ना छोड़े, क्योंकि और जो बग़ैर उज़र के छोड़ दे, कोई उसके पास लिजिट रीज़न नहीं था। लिजिट रीज़न क्या है? या तो बीमारी है, या तो सफ़र है, या तो पीरियड्स हैं, ये चीज़ें हैं, या दूध पिलानी और प्रेग्नेंट औरत के लिए अल्लाह ताला ने रुख्सत दी है, तो ये लिजिट रीज़न्स हो सकते। लेकिन इसके अलावा तो कोई रीज़न ऐसा नहीं है कि जो हम छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें सर दर्द बहुत हो जाता है। तो भाई आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तू ही मुझे इस रोज़े में मेरा सर दर्द ना हो, क्योंकि आप हाइड्रेट नहीं होते तो सर दर्द हो जाता है। हम तो चाय छोड़ ही नहीं सकते, चाय ना पिए तो फिर हम तो काम ही नहीं कर सकते, लिहाजा हम रोज़ा ही छोड़ देते। हाँ, अरे ऑफिस में बहुत काम है लिहाजा हम रोज़ा छोड़ देते, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये कोई लिजिट रीज़न नहीं है। और जानते हैं आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रात को सो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रात को सो रहा था तो मेरे पास दो लोग आए, दो फरिश्ते यानी, उन्होंने मुझे उठाया और मुझे लेके चल पड़े एक पहाड़ की तरफ, और उन्होंने कहा कि आप चढ़ो इस पहाड़ पे। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल है इस पहाड़ पे चढ़ना। उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करते हैं, आप चढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं चढ़ा तो पहाड़ के जब मैं टॉप पे पहुंचा तो मुझे चीखों की आवाज़ आई। तो मैंने पूछा ये किन लोगों की चीखें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये जहन्नमियों की चीखें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैंने देखा कि आग है और उसके अंदर कुछ लोग उल्टे लटके में और उनके मुंह चीरे में और उनमें से खून निकल रहा है। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जो रोज़ा जल्दी इफ्तार कर लेते थे, यानी इफ्तारी का टाइम ही नहीं है और उन्होंने शाम को रोज़ा इफ्तार कर लिया बेचैन होके, और इफ्तारी का टाइम नहीं और ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। इमेजिन करें अगर रोज़ा जल्दी इफ्तार करने, जल्दी से मतलब ये नहीं कि अब आप देर से करना शुरू हो जाएं, अजान भी हो रही है, आपने कहा हमने तो हदीस सुन ली हम लेट इफ्तार, नहीं ये नहीं मतलब, यानी है रोज़े का टाइम नहीं हुआ इफ्तारी का और वो पहले ही इफ्तार करके बैठ गए क्योंकि वो उनसे सब्र ही नहीं हुआ। तो उन लोगों का अगर ये अंजाम है, इमेजिन करें जो रोज़ा रखता ही नहीं है, उसका क्या होगा? ये इजी चीज़ नहीं है। अब हमारे यहाँ पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हमारे यहाँ ये भी रिवाज हो गया कि लोग रोज़े ही नहीं रखते, छोड़ना ही शुरू हो गए। गर्मी बहुत है, बच्चे ने स्पोर्ट्स खेलनी है, उसका मैच है, उसका ये है, पता नहीं क्या क्या बहाने हमारे हो गए। हालांकि ये तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर रोज़ा छोड़ा जा सके। तो जितनी मैंने आपको फजीलतें बताई हैं, इनके बाद तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो रोज़ा छोड़ दे। ये तो वो इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने हमें एक सआदत दे दी, इतनी बड़ी हमारे लिए एक ऐसी चीज़ दे दी जिसे हम कितनी ज़्यादा रिवॉर्ड्स अपने लिए कमा सकते हैं। ऐसे रोज़े तो ये वो इबादत है जैसी कोई इबादत है ही नहीं। और ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जब ये इबादत कर रहे हैं तो हम इसका पूरा पूरा अजर उठाएं, ये ना हो कि हमारा अजर कहीं ज़ाया हो जाए। कैसे ज़ाया हो सकता है रोज़े का अजर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो झूठ बोले रोज़े में, जो बंदा रोज़े में झूठ बोले और झूठ बोलता है और झूठ पे अमल करता है, अल्लाह ताला को फिर कोई परवाह नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहा है। यानी हदीस में क्या आया, अल्लाह ताला को परवाह नहीं, ये नहीं फरमाया उसके रोज़े की परवाह नहीं, अल्लाह ताला उसको भूखे प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं। व्हाट डज दैट मीन? कि यानी उसका रोज़ा नहीं है, वो जस्ट भूखा प्यासा है। क्यों? इसलिए कि वो झूठ बोल रहा है रोज़े में, झूठ पे अमल कर रहा है। इसका मतलब है कि जब इंसान हराम काम करता है रोज़े में तो उसके रोज़े का अजर ज़ाया हो जाता है, उसका रोज़े का अजर वो नहीं है जैसे कि आपने जो फजीलतें सुनी, जो सवाब सुने। यानी हम हलाल से परहेज़ करते हैं कि हमने खाना नहीं खाना, खाना हलाल है ना, खाना खाना सही है ना, आप खा सकते, लेकिन हमने क्यों छोड़ा? अल्लाह के हुक्म की वजह से। अल्लाह ताला ने इस वक्त मना किया हुआ तो हम नहीं खाएंगे। तो अल्लाह ताला ने गीबत, चुगली, झूठ, लोगों को तंग करना, लोगों को ताने देना, लोगों को सताना, उनको हर्ट करना, इससे भी तो रोका हुआ है। उसको छोड़ना नहीं है, ये हराम चीज़ें हैं। हलाल को हमने छोड़ दिया क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और हराम जो अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए हराम किया हुआ उसको छोड़ा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का खून, जान, माल, खून यानी खून और माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पे हराम है, यानी ना आप उसका खून बहा सकते, ना उसका माल छीन सकते, ना उसकी इज्जत पे हमला कर सकते, हराम है दूसरे मुसलमान के लिए। एंड वी डोंट केयर, दूसरे को तकलीफ दे रहे, अपनी ज़ुबान से अज़ियत दे रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, कोई रिवॉर्ड नहीं है उनका, वो बस भूखे प्यासे हैं फॉर नथिंग, क्योंकि उनका रोज़ा है ही नहीं, इसलिए कि वो हराम खा रहे हैं। जब चुगलियाँ गइबतें कर रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, तो आपने कैसा रोज़ा रखा? सो बी केयरफुल, जब आप रोज़ा रखें तो ऐसा ना हो कि आपका रोज़ा ज़ाया हो जाए इन गुनाहों की वजह से। उस वक़्त जहन में रखें कि मेरा रोज़ा खाने पीने का ही रोज़ा नहीं है, मेरा रोज़ा ये भी है कि मैं इन हराम चीज़ों से बचूं। आपने फ़ोन पकड़ा, रोज़े में है, चलो जी उससे बातचीत कर ले, उससे गपशप कर रहे हैं, अब रोज़े का टाइम भी तो पास करना है, बातें कर रहे हैं, अब बातों बातों के अंदर क्या है, गइबतें भी हो रही हैं, चुगलियाँ भी हो रही हैं, उसने देखो ऐसा किया, देखो वो ऐसी है, वो देखो ऐसी है, सारा अजर ज़ाया। उसके बाद अब आपका टाइम नहीं गुजर रहा तो फिल्म लगा के बैठ गए, उसके अंदर क्या क्या बेहयाई के सीन आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। आंखों का भी तो रोज़ा है, सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं है, आँख का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, इन तीनों चीज़ों का भी तो रोज़ा रखें, हाथों का भी रोज़ा है, इससे दूसरे को हर्ट ना करें। चीख चिल्ला रहे हैं, बच्चों पे चीख रहे हैं, हाँ क्या है, मैंने रोज़ा रखा हुआ, वो रोज़े के अंदर आपने चीखना थोड़ी है, गुस्सा कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से में आपे से बाहर, क्यों मैंने रोज़ा रखा हुआ, वो ये क्या एक्सक्यूज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला को जो घूंट बहुत प्यारा है ना, वो गुस्से का घूंट है जो इंसान पी जाए, गुस्सा आया उसने पी लिया, ये अल्लाह को बहुत प्यारा है। तो हो सकता है कि आपको रमज़ान में रोज़े की हालत में बहुत गुस्सा आता हो, लेकिन उस वक़्त आपने गुस्से को कंट्रोल करना है किस लिए, ये अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। ज़ुबान को होल्ड करना है किस लिए, कि मैंने रोज़ा रखा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमसे कोई झगड़ा करे, आप नहीं कर रहे, उसने आके झगड़ा शुरू कर दिया, मसलन आपके हस्बैंड आए, उन्होंने आके बहस शुरू कर दी, मसलन बच्चे गुस्सा दिला रहे हैं, उन्होंने कुछ आगे से आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया, आप कोई बात कह रही हैं वो सुन नहीं रहे, तो अब आपने ये नहीं कि आगे से उनके साथ झगड़ा शुरू कर देना, आपने क्या कहना है, मैं रोज़े से, यानी रोज़ा मुझे स्टॉप कर रहा है, मैं नहीं इस वक्त तुम्हारे साथ लड़ सकती, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ झगड़ नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरा रोज़ा है। तो रोज़ेदार को अल्लाह ताला इस तरह लिमिट कर देता है। इसी तरह आप दूसरों को हर्ट ना करें अपनी ज़ुबान से कि ताने देने बैठ जाए। वैसे भी मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान सिक्योर रहें, महफूज रहें। मुसलमान ना हाथ से हर्ट करता है ना ज़ुबान से हर्ट करता है, और रोज़ा रख के हम हर्ट शुरू कर दें लोगों को करना, इसको कुछ कह दिया, उसको कुछ कह दिया, सास है तो उसने बहू को कुछ सुना दी, बहू है तो उसने सास को कुछ कह दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि तुम्हारा रोज़े का दिन और बग़ैर रोज़े का दिन एक बराबर नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जैसे हम आजकल हैं उसी तरह रोज़े में भी हों, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोज़े में हमें डिफरेंट होना है, हमारा सोना जागना उठना बैठना हमारी बातचीत डिफरेंट होनी चाहिए, हमारी दिन की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकती। अगर सेम है ना तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, क्या आपने अच्छा किया फिर रमज़ान में, अगर सेम ही रखा तो डिफरेंट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ रमज़ान आ गया है। इफ्तारी में तो पता चलता ही है कि रमज़ान आ गया, पूरे दिन में पता चलना चाहिए कि जी रमज़ान है, कुरान खुल गए हैं, बातों में नरमी आ गई है, गुस्सा आपने पी लिया है, बच्चों को पता चलना चाहिए रमज़ान आ गया, अब तो अम्मी बहुत अच्छे तरीके से मुझे मेरे साथ बहुत नरम होंगी, तो रमज़ान का पता चलना चाहिए। हाँ, शौहर को भी पता चलना चाहिए कि भाई रमज़ान आ गया, बेगम का मूड कितना अच्छा रहता है, ना कि उलट हो जाए। तो इसलिए अपनी रमज़ान को ऐसा प्यारा बनाएं। और दूसरा, रमज़ान में सिर्फ ये नहीं कि हम इबादत कर रहे हैं, तो हम एक तरफ होके बैठ जाएं और बस हम इबादत में ही लगे में, और बस मैंने तो किसी की परवाह नहीं करनी, जो जहाँ जाए, ना कोई इफ्तारी बना रहे हैं, ना सहरी बना रहे हैं, ना किसी का कोई ख्याल है। नहीं, रमज़ान गमख्वारी का महीना भी कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरों के साथ हमदर्दी का महीना भी कहा है। किसी ने मुझे कहा कि मुझे इतना अफसोस होता है कि मैं सहरी बना रही होती हूँ और मेरे हस्बैंड तो आराम से नफल पढ़ते हैं और मुझे सहरी बनानी पड़ती है। मैंने कहा आपका अजर पता नहीं कितना ज़्यादा है, आप सारे घर को सहरी करवा रही हैं। वो जो आप सहरी बना रही हैं उसको बेकार ना समझे, जो आप इफ्तार बना रही हैं उसको बेकार ना समझे। हम कहते हैं वो दूसरे घर में जाके या कहीं और जाके हम लोगों को इफ्तारियां कराएंगे उसका सवाब है, और जो मैं घर में बना रही हूँ उसका कोई नहीं। घर में जो आप ये सारे रोज़ेदार हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और जो भी, उनको जो आप इफ्तार कर रहे हैं उसका भी आपको अजर मिलता है, वो सब अजर के काम है। तो उसके ऊपर ऐसे उसको बेकार ना समझे, मगर अभी से सोच ले कि अगर मैंने किसी को इफ्तार करवानी है तो अभी से उसका प्लान कर लें कि फलां दिन में इफ्तार करानी है, इस अभी से प्लान कर लें कि मैंने इतना कुरान पढ़ना है, अभी से इसकी प्लानिंग कर लें, प्लानिंग के ये दिन है, मैंने फलां जगह पे दौरा है कुरान अटेंड करना है, मैंने ये काम करने हैं रमज़ान के, उनकी लिस्ट बना लें और उसको स्केड्यूल बनाएं। मैं सुबह में इतने बजे सोऊंगी, इस वक्त मैंने ये करना है, इस वक्त मैंने ये करना है, सारा सोने का भी स्केड्यूल। ये नहीं कि सोए तो सारा दिन सोते ही रहे, अब जोहर में आके किसी ने उठाया कि अब उठ जाओ तो सारा दिन तो आपने सो के ही गुजार दिया, ऐसे नहीं। मसलन आप कहें कि मैंने 2 घंटे सोना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 2 घंटे का अलार्म लगा के सोएं, उसके बाद मैंने उठ के ये करना है, फिर मैंने दौरा कुरान के लिए फलां जगह जाना है या मैंने ऑनलाइन सुनना है, उसकी प्लानिंग अभी से करें। सारी प्लानिंग आपके सामने होनी चाहिए, फलां दिन में मैंने इफ्तार कराना है। इफ्तार कराने वाले को भी कितना अजर मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को। तो आप लोगों को इफ्तार करवाइए, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी ग्रैंड पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ्तार बना के किसी के घर पहुँचा दें, अगर आपको शौक है ना तो इफ्तार बना के उसके घर पहुँचा दें। अब होता क्या है कि हम इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज कर लेते हैं, इफ्तार पार्टियां, चाहे रेस्टोरेंट में चाहे घरों में, सारा वक्त हम उसका काम करते रहेंगे, पूरा दिन से शुरू हुए में, उसके बाद भी काम नहीं ख़त्म होगा, ना हमने कुरान पढ़ा, ना हमने कोई और काम ढंग से किया, ना हमारी नमाजें सही से हुई, बस इफ्तारियों में ही लगे रहे। और वो इफ्तारी के वक्त क्या है, लोग आ गए और वो भी गप्पे मारते जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बस दुआओं का टाइम भी गुजर गया। और मैंने आपको बताया ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, ख़ास तौर पे इफ्तार के वक्त में दुआ कबूल होती है, तो उस वक्त दुआएं करें। तो इसलिए पहले से सोच लें कि अगर मैंने इफ्तार करवाना है, और बहुत अच्छा एक तरीका आपको बताऊं कि आप किसी मस्जिद में इफ्तारी के लिए पैसे दे दें, ना आपका कोई एहसान होगा किसी के ऊपर कि मैंने उसको इफ्तार कराया। होता ही है कि जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में इफ्तार कराने को आप ज़रूर कराएं, इससे मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आप होता ही है कि इसकी भी एक कंपटीशन शुरू हो जाती है जी, उन्होंने इफ्तारी पे बुलाया, अब हमने भी बुलाना है, अब पहले से स्केड्यूल हो जाता है, फलाने दिन फलां के घर इफ्तारी, फलाने दिन, अब मुझे तो शर्म आती है, अब मैं भी इफ्तारी करूँ। नहीं, अदले का बदला थोड़ी होती है इफ्तारी, कोई टाइम तो ऐसा रहने दें जिसमें नेकी सिर्फ अल्लाह की खातिर हो, अदले बदले के लिए नहीं हो कि वो कर रही है तो अब मुझे भी करनी ज़रूरी है। नहीं, आप मस्जिद में देंगे, आप जानते ही नहीं है किसको आपने इफ्तार करा है, बस अल्लाह की खातिर है, ठीक है। तो इसी तरह आप इबादात में, जो जैसे मैंने आपको बताया कि कुरान करीम की तिलावत का बहुत एहतमाम करें, और दूसरी चीज़ आप सहरी के वक्त थोड़ा सा पहले उठ के नवाफिल अदा करें। आप तरावी के लिए भी ज़रूर जाते होंगे, तरावी को भी ऐसे बनाएं कि एक फैमिली टाइम बनाएं, बच्चों को लेके जाएं, हस्बैंड सब मिलके जाएं, जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं, पार्टीज़ पे जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, किसी और जगह पे पिकनिक पे जाते हैं, मस्जिद जाना भी एक फैमिली एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप घर में पढ़ सकते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बाज़ लोगों को अच्छी तरह से कुरान पढ़ना भी नहीं आता, तिलावत भी सही नहीं होती, या उनको नींद आ जाती है, या घर में वो सुस्त हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं और बस थोड़ा सा पढ़ो, आप हमसे नहीं और। जब मस्जिद में जाते हैं ना, एक माहौल होता है, उस माहौल में इजी हो जाता है करना, क्या कि 8 पढ़ लीं, 12 पढ़ लीं, 10 पढ़ लीं, जितनी भी हैं, अब आपको पता है कि पढ़ के ही जानी है, तो अब आप गए हैं तो पढ़नी पड़ेंगी, और इस तरह बच्चों को भी आदत पड़ती है मस्जिद जाने की, तो इसको एक फैमिली एक्टिविटी बनाइए और वहाँ जाके तरावी पढ़ के आएँ। क़यामुल लैल का भी इतना अजर है कि जिसने क़यामुल लैल किया रमज़ान में, रमज़ान की रातों में क़याम किया ना, उसके बारे में भी आता है ईमान और एहतसाब के साथ। जैसे मैंने आपको रोज़े का बताया, उसी तरह ये भी हदीस है, ईमान और एहतसाब के साथ अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस महीने में तो इतनी बरकतें हैं ना कि यानी एक एक अमल के ऊपर कि अल्लाह ताला इस पर भी बख्श देता है। इस पर कुछ तो हम करने को तैयार हो। और ये याद रखें, तरावी और रोज़ा ये कोई अटैच नहीं है कि अगर मैंने तरावी नहीं पढ़ी तो रोज़ा कैसे रखूँ, या अगर मैंने रोज़ा नहीं रखा तो अब तरावी कैसे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। तरावी अलग इबादत है, रोज़ा अलग इबादत है, रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है, तरावी सुन्नत है। ठीक है, तो आप फ़र्ज़ इबादत को फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से, तरावी तो पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ लें। ठीक है, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ा रख लेते हैं लेकिन तरावी के लिए उनका नहीं खड़ा हुआ जाता या उनसे नहीं जाया जाता, दो नफल भी पढ़ लेंगे आपका क़याम हो गया, दो भी पढ़ लें, दो रकत घर में ही पढ़ लें आपका क़याम हो गया। और आपको बहुत कुरान हिफ्ज़ नहीं है तो कुरान करीम को पकड़ के भी पढ़ सकते हैं तरावी में। मैंने तो ऐसे किया हुआ कि मैं ना टेबल ऐसे है ना, ये टेबल, इसके ऊपर मैं रख लेती हूँ अपना कुरान और मैं साथ ही खड़ी हुई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो है, उसके ऊपर आपने रख लिया अपना कुरान और साथ खड़े हुए हैं तो आप अपनी नज़र से उसको पढ़ते जाते हैं साथ साथ, उठाने की भी ज़रूरत नहीं, आपने हाथ बांधे में और ऐसे साथ देखते जा रहे हैं वो यहाँ पे पढ़ा हुआ है आपके कुरान, तो ये बहुत इजी हो जाता है उनके लिए। जो हिफ्ज़ नहीं अभी उनका पूरा कुरान का है, थोड़ा हिफ्ज़ है, तो वो आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी तरावी को लंबा कर सकते हैं, यानी तरावी अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो लंबी नमाज कर सकते हैं, लेकिन आप जब मस्जिद से पढ़ के आ गए तो अब ये ना करेंगे पूरी रात में अब आपने कुछ नहीं पढ़ा। सहरी के वक्त ज़रूर दो नफल पढ़ें और उस वक्त ज़रूर दुआएं करें। जानते हैं सहरी खा रहे हैं आप जब, कुछ लोग तो सहरी के लिए उठते ही नहीं है, सहरी में चाहे सिर्फ पानी पी लें लेकिन सहरी ज़रूर करें, चाहे पानी पी लें, ज़रूरी नहीं आपने बहुत हैवी कुछ करना है, वो भी सहरी हो गई चाहे आपने पानी पी लिया। मगर याद रखें सहरी करने वालों के लिए भी फरिश्ते दुआएँ करते हैं। आप इधर सहरी कर रहे हैं उधर फरिश्ते आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, कितनी खुशकिस्मती है, क्योंकि पिछली उम्मतों के अंदर सहरी नहीं होती थी, ये इस उम्मत में है सहरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी दे रही, तो सहरी को छोड़ना नहीं है, हमने सहरी ज़रूर करनी है। इसी तरह हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है आपके लिए, ये जो ये फ्लायर भी है आपको इसका मिल जाएगा यहाँ से, इसके ऊपर ये QR कोड है, आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। हमारे यहाँ पे जो सहरी से पहले का टाइम है आप उसमें थोड़ा सा उठें और ये हमारा प्रोग्राम होता है, इसमें आप शामिल हों। इस प्रोग्राम में मैं आपको रिमाइंडर्स देती रहूँगी, जो आज मैंने आपको बातें बताई हैं ना, ये आपको अब 10 दिनों में तो वैसे ही भूल जाएंगे, 10 दिन क्या अभी घर जाएंगे तो आधी भूल ही होंगी क्या कहा था ना? तो रिमाइंडर्स हम सबको चाहिए ना, तो रमज़ान की एवरी नाइट में ये हमारा प्रोग्राम होता है, लास्ट 10 नाइट्स में आधी रात को होता है, ताकि हम सब मिल के जागें और कोई सोए नहीं। ठीक है, तो और हमें इंशाल्लाह उसमें लैलतुल कदर भी मिल जाए, तो उसके लिए हम ऑल 10 नाइट्स हम ये प्रोग्राम करते हैं। जो फर्स्ट 20 नाइट्स हैं उनमें सहरी से पहले होता है, टाइमिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग उसमें शामिल हों, आप लोगों को रोज़ाना का रिमाइंडर मिले, आपको रोज़ाना मोटिवेशन मिले। ठीक है, कि आपने ये आज काम करने हैं, ये करें, आपको मैं दुआएं बताऊंगी, अज़कार बताऊंगी जो आप कर सकते हैं, और वो फिर इंसान के अंदर ना जोश आता है फिर कि हाँ देखो मैं ये भी कर, और याद भी आ जाता है, वरना तो भूला ही रहता है। तो इसके लिए रोज़ाना की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम भूलने वाले लोग हैं। अगर हमें जोश होता भी है तो रमज़ान के पहले 2-3 दिन तो बहुत जोश होता है, आपने देखा नहीं है जो पहले 2-3 दिन जाए मस्जिदों में इतनी भरी होती हैं, उसके बाद देखें तो आहिस्ता आहिस्ता लोग ऐसे गायब होने शुरू होते हैं, और पहला हफ्ता गुजरने की देर है उसके बाद आधे हो जाते हैं। वो क्या हुआ, शुरू में इतना जोश था, उसके बाद सिर्फ वीकेंड के वीकेंड जोश है, और उसके बाद वीकडेज में गायब। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान है ना, तो भूलते हैं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए एवरी डे के रिमाइंडर्स आपको मिलेंगे, और आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को। फिर लास्ट 10 नाइट्स में भी दुआएं भी होंगी, अज़कार भी होंगे और आपको मोटिवेशनल बातें भी होंगी, तो वो भी आपकी इंशाल्लाह रातें जाग के गुजर। अगर आपको मुश्किल लगता है, वैसे आपने खुद जागना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को मुश्किल लगता है कि हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, तो वो ज़रूर इन रातों में हमारे प्रोग्राम को सुने, उससे ये होगा कि वो जागे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो ऐसे हो जाता है ना, जब इंसान को लगता है कि मेरे साथ और भी कितनी बहनें जागी हुई हैं इस वक्त, बस देखो सभी ये कर रहे हैं, तो इंसान को इनकरेजमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए ये हमने प्रोग्राम ख़ास रमज़ान का रखा है और ज़्यादा लंबा नहीं, जो फर्स्ट 20 डेज़ है इनका प्रोग्राम सिर्फ हार्डली हाफ एन आवर का, बस हार्डली हाफ एन आवर का प्रोग्राम, उसके अंदर ही आपको छोटी छोटी बातें आपको बता दी जाएंगी जिनसे आप अपना रिवॉर्ड कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब इंसान को रिवॉर्ड का लालच होता है ना, तो फिर ईजी हो जाता है काम करना। वैसे मैं आपको कहूँ ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, बहुत सारी आपको लिस्ट मिलेंगी, आप ये कर लें जी, ये नफल पढ़ लें, इतना कुरान पढ़ लें, वो ठीक है, अब आपने पढ़ा, अच्छा ठीक है। मैं लेकिन जब आपको पता चलता ना इसमें मुझे ये मिलेगा, तो फिर होता है कि हाँ मैं क्यों ये रिवॉर्ड छोड़ूँ, तो फिर आपका और दिल करता है कि आप ज़्यादा करें। तो इसलिए इस प्रोग्राम में आप लोग ज़रूर शामिल हो। इसी तरह हमारा ये भी थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारा जाता है। अगर आप आगे भी किसी को पहुंचाना चाहें तो वो अपने टाइमिंग के मुताबिक वहां पे सुन सकते हैं, बिकॉज ये ऑल ऑनलाइन जा रहा है। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, इन केस अगर आप मिस कर दें तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। और आपके बांग्लादेश में अगर लोग हैं जो उर्दू समझते हैं, उनको भी इसमें शामिल कीजिए। इसी तरह हमारा कुरान पाक के ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन, तर्जुमा और तफसीर का भी वंस अ वीक क्लास होती है, आप लोग उसमें भी शामिल हो। अगर आप लोग शुरू में इसको सिर्फ देखना चाहते हैं, जस्ट आपके आपको समझ आता है या नहीं, तो आप लिसनर के प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, उससे आप लोगों को थोड़ा पता चलेगा कैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको मेरी बात अभी तक समझ आ रही थी कि नहीं? हाँ, तो मैं ही समझाती हूँ तफसीर भी, वो भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं इतनी ईजी बोलती हूँ, ठीक है ना? तो अगर आपको ये समझ आए, जिसको मेरा अभी तक का लेक्चर समझ आया ना, उसको ये प्रोग्राम भी समझ आ जाएगा, उसको इंशाल्लाह तफसीर भी समझ आ जाएगी। तो फिर तो आप लिसनर ना बने, आप सीधे स्टूडेंट बने, इंशाल्लाह सीधे स्टूडेंट बने। इस रमज़ान को बनाएं कि मेरे लिए चेंज का रमज़ान हो। मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए भी एक वो दिन था जिसमें किसी ने मुझे भी दावत दी थी, ऐसे ही किसी जगह पर, कि आओ कुरान करीम के साथ जुड़ जाओ, आओ कुरान का तर्जुमा और तफसीर सीखो। वो कि मैंने पहले से सीखी हुई थी, फिर भी जो उस चीज़ की वजह से चेंज आया, वो पहले सीखने से नहीं था। हालांकि मैं पहले बहुत साल पहले पढ़ चुकी थी, यानी अपने कॉलेज स्कूल के ज़माने में पढ़ चुकी, लेकिन मुझे ऐसी एक गैदरिंग में किसी ने कहा और उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। हो सकता है आपके लिए भी ये टर्निंग पॉइंट हो। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बिठाया है ना, अल्लाह ताला आपको लेकर आया है। हो सकता है किसी ने इरादा किया हो लेकिन वो ना आ सकी हो, और हो सकता है किसी ने समझा हो कि मैं तो शायद ना जा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको यहाँ पे ला बिठाया। यू नेवर नो किसके लिए अल्लाह ताला ने क्या खैर का इरादा किया है, वी डोंट नो। अल्लाह ताला आपको लेकर आया, अल्लाह ताला ने आपको ये सुनवाया, इसमें कितनी खैर है ये हम नहीं जानते। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सीखें, फिर आगे अपनी लैंग्वेज में आगे लोगों तक पहुंचाएं, अपने लोगों तक जो उर्दू नहीं जानते। अगर आप लोगों को समझ आई है ना मेरी बात, तो आपके ऊपर अब ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि आपके कंट्री में हर कोई उर्दू नहीं समझता। और मैं बहुत दिन से इस चीज़ की तलाश में हूँ कि कोई बंगला बोलने वाला हो जो बंगला लैंग्वेज में लोगों को बताए, क्योंकि हमारे ऐसे बूथ जब हर जगह लगते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बंगला बोलने वाली सिस्टर्स आती हैं। मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी आई, उन्होंने कहा कि कोई बंगला में नहीं आपका है कोर्स, लेकिन मेरे पास कोई सिस्टर नहीं है ऐसी जो इस लैंग्वेज में आगे पहुँचा सके। अल्हम्दुलिल्लाह पश्तो में आगे हमारे कोर्सेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पर्शियन में आगे कोर्सेज हैं, इंग्लिश में हैं, उर्दू में हैं, बंगला में अभी तक कोई नहीं है। क्योंकि मे बी आपके लोगों में से अभी तक कोई आगे नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह मे बी नहीं आया, लेकिन आज मैं आप लोगों को दावत देती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इस तरफ आएंगे ना, तो पता नहीं कितनी कम्युनिटी तक आप खैर लेके जा सकते हैं, आप कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यू कैन बी द सोर्स। और एक दिन अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है कि आपको तो आता था ना, आप तो बोल सकते थे, आपने क्यों नहीं अपने लोगों तक पहुंचाया। आपके लोगों का हक है कि उन तक बात पहुंचे, तो किससे पहुंचेगी? उन्हीं लोगों से पहुंचेगी जो सीखेंगे और आगे पहुंचाएंगे ना। तो शैतान को नहीं आने देना। शैतान आपसे कहेगा कि नहीं नहीं तुम तो नहीं कर सकती, तुम तो बहुत बिजी हो। अल्लाह ताला बरकत डालता है। कोई ऐसा नहीं कि मैं फारिगुल बाल हूँ या मेरे पास कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी बच्चे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड है, फैमिली है, सब है और सारे ही काम है। अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप सब कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, आज इरादा कर लें। इरादे पे भी अजर मिलता है, जो आपकी इंटेंशंस है ना, इसके ऊपर भी आपको अल्लाह ताला रिवॉर्ड करता है। आज इरादा बांध लें और साइन करके जाएं कि हमने इंशाल्लाह इसमें शामिल होना है, और अल्लाह ताला से दुआएं करें। अगर आपका इरादा सच्चा होगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। बिलीव मी, अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको चलाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे काम हो जाएंगे, और ये कुरान भी आप सीखेंगे सारे कामों के साथ। जिसका हाथ अल्लाह पकड़ ले उसके कोई काम रह सकते हैं पीछे? नहीं रह सकते। जिसका अल्लाह हाथ पकड़ ले, जिसका मददगार अल्लाह बन जाए, वो पीछे नहीं रह सकता। इसलिए अल्लाह ताला आपका मददगार बन जाएगा अगर आप अल्लाह ताला के कलाम को सीखेंगे, कुरान को सीखेंगे, समझेंगे, और इसको इरादा बना ले, अभी से नियत कर ले कि मैं खुद सीखूंगी, मैं अपनी बंगला बोलने वाली अपनी कम्युनिटी को, अपने कंट्री में मैं इसको पहुंचाऊंगी। ये नियत कर लें, इंशाल्लाह ताला देखें आपका रिवॉर्ड अभी से शुरू हो गया। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।